वचन। नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी, कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी, तेरी दुनिया सारी। तू
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहकर कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब परमेश्वर की निकटता में आए और उसे सहायता मांगे और प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, उस पर विचार करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि आप हम में से प्रत्येक की आत्मिक आँखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय और विचारों को खोल दें, हमें एकाग्रतापन दें ताकि जब हम आपके जीवित वचन का अध्ययन करें तो हम उसे अपनी आत्मिक आँखों से देख सकें, समझ सकें और अपने जीवन में उसे ग्रहण करने पाएं, ताकि आज के इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन में बहुतायत से आशीष को प्राप्त करें और आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकें। हम प्रार्थना करते हैं उन प्रिय भाई बहनों के लिए भी जो दुखी हैं, निराश हैं, चिंता और परेशानी में हैं, बीमारी में हैं। पिता परमेश्वर, आप उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि करें ताकि वे भी आपके वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर सकें और आप पर भरोसा कर सकें कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनकी जरूरतों को समझते हैं। पिताजी, इस समय प्रत्येक के साथ हो और सहायता करें। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, समय की कमी के कारण हम पिछले अध्ययन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही नहीं पढ़ पाए थे। उसने यीशु को देखकर कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। आज हम यूहन्ना, अन्द्रियास, फिलिप्पियुस, नतनेल आदि की गवाहियों को पढ़ेंगे कि यीशु के बारे में ये क्या कहते हैं। तो आइए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 19 पद में लिखा हुआ है, यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, हम आगे देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जीवनी जन्म से नहीं देता है। जैसे लूका ने अपने वृतांत में लिखा, यरूशलेम से यहूदियों ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा कि वे पता लगाकर आए कि यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है। मित्रों, यूहन्ना परीक्षा में गिर सकता था कि अपने आप को महान दिखाए, परंतु उसका स्वभाव ऐसा नहीं था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 30 पद में उसने स्पष्ट कहा है, वह यीशु बड़े और मैं घटूं। हर एक विश्वासी का स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए कि वह बढ़े और मैं घटूं, अर्थात मसीह बढ़े और मैं घटूं। देखिए यूहन्ना उन्हें क्या उत्तर देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 20 पद में हम पढ़ते हैं, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूँ। मित्रों, यहाँ शब्दों के पीछे छिपा अर्थ देखिए। उन्होंने अपने मन की जिज्ञासा प्रकट नहीं की कि वह मसीहा है। उसने स्पष्ट कहा कि वह मसीह नहीं था। यदि वह मसीह नहीं तो कौन है। हम यूहन्ना 1:21 में पढ़ते हैं, तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है, क्या तू एलिया है। उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वह भविष्यवक्ता है। उसने उत्तर दिया कि नहीं। देखिए, यूहन्ना का उत्तर सीधा, संक्षिप्त और स्पष्ट था। वह ना तो मसीह था, न ही एलिया था और न ही अपेक्षा का भविष्यवक्ता था, अर्थात मूसा, जिसके आगमन की भविष्यवाणी व्यवस्था विवरण की पुस्तक 18 अध्याय उसके 15 में है। हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 1 अध्याय के 22 में, तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें कि तू अपने विषय में क्या कहता है। यहाँ पर हम पाते हैं कि जब उन्होंने बल देकर कहा कि उन्हें जाकर अपने भेजने वालों को बताना होगा कि वह कौन है, तब यूहन्ना ने अपना परिचय इस प्रकार से दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 23 पद में लिखा है, उसने कहा, मैं जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। पुकारने वाले की शब्द यीशु का वचन है और यूहन्ना शब्द। हमें भी शब्द ही होना है जो मसीह की महिमा का वर्णन करे। मित्रों, उसकी पुकार पर ध्यान दें, प्रभु का मार्ग सीधा करो, अर्थात प्रभु के आने के लिए तैयार हो जाओ। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं स्वर्ग का राज्य निकट है। मार्ग सीधा करो का अर्थ है अपने जीवन में उलट फेर की बातों का त्याग करो। यूहन्ना अपनी पहली पत्री 1 अध्याय उसके 6 पद में लिखता है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। मित्रों, हम अपने जीवन को पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 8 और 9 के आधार पर सीधा कर सकते हैं। यूहन्ना ने यशाया का उद्धरण दिया जो यशाया 40 अध्याय उसके 3 पद से है। अब हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 1 अध्याय और उसके 24 और 25 पद में। ये फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा कि यदि तू ना मसीह है और ना एलिया और ना वह भविष्यवक्ता है तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है। ध्यान दें कि अब वे उस मुद्दे की बात पर आते हैं, यदि तू यह नहीं तो बपतिस्मा क्यों देता है। हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 1 उसके 26 और 27 पद में। यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है जिसकी जूती का बंध मैं खोलने के योग्य नहीं। यहाँ पर कहता है कि मैं जूती के बंद खोलने योग्य नहीं। हम उसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, परंतु इसी यूहन्ना के शब्दों में एक और महान व्यक्ति का आगमन होगा जो आग और आत्मा से बपतिस्मा देगा। यीशु ने आत्मा से बपतिस्मा दे दिया है। पेंतिकोस्त के दिन में आत्मा उतरा था, आग का बपतिस्मा रहता है जो वह न्याय के दिन में देगा। कुछ लोगों का मानना है कि यीशु वहां भीड़ में उपस्थित था। अति संभव है। एक शिष्य गुरु की सेवा में हर एक काम करता है, परंतु उसके जूते के बंध नहीं खोलता है। मित्रों, यह काम दास का था। यूहन्ना ने कहा कि वह यीशु का दास था, वरन वह तो इस योग्य भी अपने आप को नहीं ठहराता है कि उसके जूते के बंधन को खोल दे। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 28 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, ये बातें यरदन के पार बैतनियाह में हुई जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। मेरे मित्रों, प्रस्तावना में मैंने आपको बताया था कि यूहन्ना स्थान और समय के बारे में अति स्पष्ट है। यहां वह स्थान का स्पष्ट उल्लेख करता है कि यूहन्ना यरदन के पार बैतनियाह में बपतिस्मा देता था। अगले पद में समय के बारे में वह स्पष्ट करता है जो अगले दिन के बारे में है। आइए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 29 पद में। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। मित्रों, यूहन्ना यीशु की ओर संकेत करके कहता है कि वह पाप मोक्षक है, अर्थात उद्धार करता है। वह पूरी तरह पापों से मुक्ति प्रदान करता है, पापों को उठा ले जाता है। उसका पाप मोचन का काम सदैव वर्तमान काल में है। कोई भी कभी भी उसके पास आ सकता है। यहाँ इसहाक के प्रश्न का उत्तर है जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय और उसके 7 और 8 पद में पढ़ते हैं। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। मेरे मित्रों, यूहन्ना कहता है कि यीशु ही मेमना है। इसके अनुसार कैन का बलिदान अनुचित था और हाबिल का उचित। मित्रों, आज जितने मेमने मंदिर में बलि चढ़ाए गए थे वे सब यीशु में पूरे होते हैं। यही कारण है कि यूहन्ना ने यीशु को पाप हरण अर्थात पाप का उद्धारक कहा है और उसे मेमना भी कहा है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 30 और 31 पद में पढ़ते हैं, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इसराइल पर प्रकट हो जाए। मित्रों, यहाँ पर हम पाते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शब्दों में स्पष्ट है कि वह सच्चा बपतिस्मा देने वाला यीशु ही है, क्योंकि वह आग और आत्मा से बपतिस्मा देता है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार एक अध्याय उसके 32 से 36 पद में आगे पढ़ते हैं। और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर की नाई आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है, और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। 35 पद में, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से दो जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। पहले यूहन्ना ने यीशु को आते देखकर कहा था, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है, और अब वह कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। बपतिस्मा लेते समय पवित्र आत्मा यीशु पर उतरा था और यूहन्ना ने उसे देखा था। अब हम आगे देखेंगे अन्द्रियास की गवाही, यूहन्ना रचित सुसमाचार एक अध्याय उसके 37 से 39 पद में। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिरकर और उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने आकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसी के साथ रहे, और यह 10वें घंटे के लगभग था। मित्रों, यीशु का यह निमंत्रण चलो आज ही खुला है। भजन संहिता 34 अध्याय के 8 पद में लिखा है, परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। देखिए यूहन्ना समय के बारे में कैसा सतर्क है, यह 10वें घंटे के लगभग था। इन दो में से एक अन्द्रियास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का शिष्य था। वह सबसे पहले अपने भाई समौन के पास जाता है। आगे हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार एक अध्याय के 40 से 42 पद में। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक तो शमौन पत्रस का भाई अन्द्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हम तो ख्रिस्तस अर्थात मसीह को पा लिया है। वह उसे यीशु के पास लाया और यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र शमौन, तू कैफा अर्थात पत्रस कहलाएगा। शमौन एक दुर्बल व्यक्ति था। जब यीशु ने उसे चट्टान अर्थात पत्रस नाम दिया तब शिष्यों को हंसी आई होगी, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि शमौन पत्रस हो सकता है। परंतु पेंतिकुस के दिन वह चट्टान सिद्ध हो गया जब उसने अपना प्रथम उपदेश दिया। उस दिन 3000 मनुष्य यीशु के अनुयायी बने अर्थात उन्होंने मसीह को ग्रहण किया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 40 से 41 पद में हम इसे पाते हैं। हम आगे देखेंगे फिलिपुस की गवाही, यूहन्ना रचित सुसमाचार एक अध्याय उसके 43 और 44 पद में। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिपुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस तो अन्द्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। यहाँ फिर स्थान का स्पष्टीकरण है, पतरस, अन्द्रियास और फिलिपुस बैतसैदा के निवासी थे, क्योंकि वे मछुए थे और बैतसैदा गलील सागर के निकट था। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार एक अध्याय उसके 45 और 46 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, फिलिपुस ने नतनेल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया, वह यीशु का पुत्र यीशु नासरी है। नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। नतनेल की गवाही हम पाते हैं। नतनेल अपने आप को बुद्धिमान समझता था, वह उपहास करता है, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकलती है? और मैं सोचता हूँ कि वह हंसा भी होगा, परंतु फिलिपुस नहीं हंसा, उसने कहा, चलकर देख ले। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि चलकर देख ले। हम यूहन्ना एक अध्याय के 47 पद में पढ़ते हैं, यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इसराइली है, इसमें कपट नहीं। ध्यान दीजिए, यह भी इसराइली वंशी है, परंतु उसमें याकूब के गुण नहीं है। वह बुद्धिमान होने का ढोंग तो करता है, परंतु उसमें कपट नहीं था। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार एक अध्याय उसके 48 और 49 पद में पढ़ते हैं, नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, उससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनेल ने उसको उत्तर दिया कि हे रबी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इसराइल का महाराजा है। मित्रों, यीशु के शिष्यों में दो संदेह रखने वाले शिष्य थे, आरंभ में नतनेल और अंत में थोमा। इस संकालु अर्थात संदेही व्यक्ति ने यीशु से साक्षात्कार पाकर अंगीकार किया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। इससे प्रकट होता है कि नासरत से निश्चय ही एक महान व्यक्ति प्रकट हुआ था। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार एक अध्याय उसके 50 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसी के लिए विश्वास करता है? तू इससे बड़े बड़े काम देखेगा। मित्रों, ऐसा लगता है कि यीशु उसकी बात सुनकर रुष्ट हुआ। उसने कहा कि नतनेल, और भी बड़े बड़े काम तू देखेगा, जो निश्चय ही उसने देखा। मेरे मित्रों, मैं समझता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आप अवश्य ही उसके वचन को सीख रहे हैं। हमारे आज का अध्ययन यहाँ पर समाप्त होता है और अगले अध्ययन में हम फिर से देखेंगे कि किस प्रकार से यीशु मसीह के वचन के द्वारा यूहन्ना ने उन्हें और भी अधिक आशीष और चमत्कार दिखाए। मित्रों, मैं विश्वास करता हूँ कि आज के अध्ययन के द्वारा आप अपने जीवन में देखने पाएंगे कि आप संदेही व्यक्ति तो नहीं हैं, या संदेह रखते हैं या नहीं रखते हैं। नतनेल और थोमा, इनमें से आप कौन सा व्यक्ति हो सकते हैं? ये आरंभ का समय है और मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी अधिक महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे जो शिष्यों के जीवन में पाए जाते हैं। प्रभु आज की इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है यीशु से विनती करने का, यही समय है आराधना स्तुति करने का, यही समय है यीशु से प्रार्थना करने का। सारी सृष्टि का तू बादशाह।